80% मार्क होना चाहिए तब होगा। तो उद्धव जी गए, पूछा, उद्धव प्रेम किसको कहते हैं जानते हो? प्रेम दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थ युक्त प्रेम होता है और एक स्वार्थ रहित निस्वार्थ प्रेम। कृष्ण के साथ में हमारा निस्वार्थ प्रेम था, उनसे कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया और कृष्ण का प्रेम भी निस्वार्थ ही था। तो उद्धव बतला सकते हो ये प्रेम कैसे छूट गया, टूटा क्यों? निस्वार्थ तो प्रेम टूटना नहीं चाहिए, टूट कैसे गया? देखो और थोड़ा सा समझ करके उत्तर दो। स्वार्थ प्रेम कैसा होता है? कोई वेश्या धन के लिए अपने अटारी पर बैठ करके संगीत इत्यादि करती है और देखती है कि कोई आया धनवान, उसको पकड़ लेती है और जब तक उसका सारा पैसा नहीं ले ले तब तक प्रेम दिखलाती है और जहां पैसा खत्म हो गया उसको दूध काट कर निकाल देती है। एक फौरा फूल पर जाता है, उसका फूल का रस ले लेता है और इसके बाद में दूसरे फूल पर बैठ जाता है, उसको भूल जाता है। एक भिक्षु किसी के घर में भिक्षा मांगने जाता है, भिक्षा मिल गई, पहले तो खूब कुछ कर रहा था, क्या राधे 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 सब कर रहा, और जहां भिक्षा दे दिया बस एक मिनट ठहर जाओ महात्मा जी, समय नहीं हमको बहुत दूर जाना। पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने स्कूल कॉलेज में गया, पढ़ाई खत्म हो गई और गुरु को गुरु मानेगा, रहेगा उनकी सेवा करेगा, ओ खत्म हो गई पढ़ाई, बस हो गया। एक हिरण जंगल में रहता है, उसमें आग लग गई, बस हिरण दूसरे जंगल में चला जाएगा, वहां नहीं। एक पेड़ है बरगद का, उसमें बहुत छाया और फल है, चिड़िया उसमें रहती है और यही आग लग गई उस पेड़ पर, पत्ते सब जल फल गए और उस पेड़ पर नहीं रह वो करेगी, रात नहीं बिताए। अब दूसरे उसी प्रकार से और भी बहुत से उदाहरण दिए, बतलाओ तो निस्वार्थ प्रेम किसी कारण के आने पर भी, प्रेम खत्म होने का कारण होने पर भी वो प्रेम बढ़ता जाता है। तो कृष्ण के साथ में हमारा जब ऐसा निस्वार्थमय प्रेम था कैसे टूट गया? उद्धव जी सुख जुलाल लगे, उत्तर नहीं दे सके, एडमिशन नहीं हुआ, विद्यालय का भवन देखा, कुंज देखा, ये सब देखा, उनका गोष्ठ देखा, किंतु एडमिशन नहीं। क्यों देखा? क्या प्रिंसिपल को देखा, राधा जी को देखा, उनके भाव को ऊपर से देखा, ललिता विशाखा जी हेड ऑफ डी डिपार्टमेंट में है, इनके भावों को देखा, ग्रहण नहीं कर सके, एक किरण भी ब्रज का नहीं बन सके, इसलिए फिर कृष्ण के पास में आए। तो कृष्ण से कुछ प्रेम की बातें हुई, उद्धव जी वहां से लौट करके आए या वहां रहने पर भी क्या गोपियों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं? तो क्या है पहला श्लोक?
एतां परां संगीतं गोविंदो,
हाँ क्या एतां परां संगीतो हो गोपबद्धो गोविंद एव लिखलात्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति जग भव भियो मुनयो भयंच किं ब्रह्म जन्म अनंत कथा। हम लोग भी जिनके भावों को पाने के लिए, रूढ़ भावों को पाने के लिए ललचते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते, ये ब्रज की गोपियां धन्य, इनका जन्म लेना सार्थक है। जो कृष्ण कैसे हैं, सर्वेश्वर है, सर्वेश्वर माधुर्य पूर्ण है, उनके चरणों में उनकी ऐसी रूढ़ स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ भाव महा इत्यादि उनके, हम लोग भी भावित भय से भी रहने वाले ये सभी लोग और हम लोग भी नारद जैसे लोग उन गोपियों की चरणी की धूलि की इच्छा करते। अंत में बतलाया आशा महो रेणु जिसाम हम श्याम वृंदावन, वेदों के लिए भी, वेद की श्रुतियों के लिए भी, जो कि अन्वेषणीय आज तक भी वो नहीं पाई, इन गोपियों की खुली मैं बनना चाहता हूं। जिसके जिसके वजह से वो वृंदावन में कौन कुंड उद्धव कुंड में खास बने हैं, जो गोपियां विशाल के समय जाएंगी उनकी चरणों की धूली उनके सिर पर लगेगी, जो लक्ष्मी इत्यादि के लिए दूसरे लोगों के लिए ये असंभव है। और अंत में कहते हैं जा वही सियाचित और जो आजाद भी आप तक आमई जो वैश्वराई रपी सदात्मनिराश गोष्ठ्यम कृष्ण शतद भगवत चरणारविंदम नस्तम तनेशु विजहो परिरभ्यताम। गोपियां धन्य है, यह सौभाग्य किसी को नहीं हुई। ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी इत्यादि जिनका ध्यान करते हैं शिव निरंतर ध्यान में नहीं आते, और उनके इन चरण कमलों को गोपियां कृष्ण के चरणों को अपने पस्ताल पर रखते हुए डरती हैं, कहीं कृष्ण का सुकोमल चरण में कहीं कठोर पंथ न लग जाए और अपने चरणों पर संतरण करते। ये गोपियों की महिमा कितनी है। इसलिए बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणु अभिक्न सहजासाम हरि कथोद्वेत पुनात कोन त्रय। इन गोपियों की चरण धूली की मैं वंदना करता हूं। एक धूली की, ये धूली किसकी होगी आप समझ सकते हैं। जब एक धूली की वंदना करना चाहते हैं तो राधा जी के चरण की धूली की वंदना करें, जिसे समस्त विश्व की हरि कथाओं से जो भ्रमर गीत इत्यादि है सारा विश्व तृप्त हो जाता है, ऐसी उनकी कथा। इसलिए अरध्यो भगवान ब्रजेशतनय तत्थाम वृंदावनम रम्या का चुतुपासना पदु पदु पर गई नजा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम पापमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः परः। समस्त आराधनाओं में भाई कृष्ण की आराधना है, वृंदावन के अतिरिक्त ये कहीं नहीं लीला, इसलिए वृंदावन को भी नमस्कार है। किंतु कृष्ण की जो आराधना है सर्वोत्तम वो गोपियों की ही आराधना है। गोपियों ने जिस प्रकार से आराधना उपपति भाव से की है ऐसा कोई भी नहीं का, रुक्मिणी सप्तभामा भी नहीं, लक्ष्मी के द्वारा की। इसलिए ये आराधना सर्वश्रेष्ठ। और इस विषय में श्रीमद् भागवत ही अमल प्रमाण है, चैतन्य महाप्रभु का यही विचार है। इसलिए गोपियों के अनुगत्य में हमारे रूप गोस्वामी ने मंजरी भाव को जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ बतलाया है, इसे बढ़कर के कोई भी जीवों के लिए और भाव नहीं है। यही कह करके आज हम वक्तव्य अपना समाप्त करते हैं और अगले वर्ष के लिए प्रतीक्षा।
Oh, साक्षात परमा ओम विष्णु पाद सुप्रसिद्ध भक्ति प्रज्ञान विष्णु गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार चंदन प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। पश्चात उपस्थित स्टूडेंटी वैष्णवगण, ब्रह्मचारीगण, वैष्णव एंड वैष्णवगण, माताएं बहने, पिछले साल भी हम लोग आए थे और इस साल भी प्रोग्राम हम लोगों का नियमित रूप से और ठीक रूप से चल रहा है। मैं तो चाहता था जो अधिक से अधिक लोग इन प्रचार इन विषयों का लाभ उठाएं और अपने जीवन में ग्रहण कर सुखी बने। परीक्षित महाराज जी को श्लोक सिंह देव गोस्वामी ने बताया, कर्मणि आरोह मानानां दुख तै दुखाय च पश्ये पाप
विपर्यासान मिथुनी चारिणाम।
मिथुनी चारिणाम जगत में लोग सुख की लालसा से और दुखों को दूर करने की लालसा से कर्म करते हैं। कोई भी प्राणी हो परस्पर मिलजुल करके या अकेले या समस्त जगत में करके चेष्टा करते हैं कि हमें सुख हो और वह सुख भी हमें हो कैसा निरवच्छन्न, उसमें दुख की छाया न रहे। किंतु होता है उल्टा, कोई मरना नहीं चाहता मरना पड़ता है, बुढ़ापा नहीं चाहता बुढ़ापा भी आती है। इतने तरह के जन्म के सृष्टि के प्रारंभ से ही प्लान बने सुख रहने के। आज भी साइंस इतना उन्नत हुआ है, होम साइंस से आरंभ करके सब मेडिकल साइंस इत्यादि रसोई का घर से लेकर सभी कुछ उन्नत हुआ। किंतु हुआ क्या, कोई सुखी हुआ? इसके लिए हम लोग युद्ध लड़ते हैं, परस्पर विवाद करते हैं, किंतु कोई भी सुखी नहीं। सुखी वही रहेगा जो भगवान का प्रेम है, और कोई उपाय नहीं है। हम अर्थ के लिए चेष्टा करते हैं कि अर्थ से हम सुखी रहेंगे, किंतु दुर्लभ है ना आत्ममृत्युना। भगवान ने जीवात्माओं को यह मनुष्य दिया है दुर्लभ, किंतु ये धन नहीं रहने पर भी दुखी हो जाने पर भी कहाँ रखे कैसे रहे, डकैतों को मालूम हो गया तब बस परिवार के साथ में कर दिया। और रहा भी उसे भी दुख रहे तभी दुख। इसलिए उस अर्थ के लिए हम लोग चेष्टा करते हैं कि इससे सुख होगा, और उससे जब अर्थ की यही दशा है तो फिर अर्थ से कमाया जाने वाला बाग बगीचा पशु कुत्ते, आजकल कुत्ते का बहुत शौक रहा है, किसी को बिल्ली को, किसी को खरगोश को, किसी को ये सब हो रहे हैं, तो इससे क्या सुखी हो जाएंगे? उसी अर्थ से विवाह होता है, शादी होती है, भाई से कोई सुखी नहीं रहेगा, सुखी रहेगा केवल मात्र भगवत भक्ति। भगवत भक्ति को भी समझना होगा, भगवत भक्ति है क्या? शंकर मंदिर में गए चौथे पर ऐसा दबाने लगे, ठाकुर जी हमारी लड़की ठीक हो जाए, उसकी शादी हो जाएगी तो 125 का बतासा चढ़ा, भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति को समझना चाहिए। मैं भक्ति बात बतलाता हूँ, फिर याद करने के लिए फिर से बतलाता हूँ। अन्य मिला ज्ञान कर्मांतम अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति। जब तन से मन से वचन से इसके अतिरिक्त भावनाओं से कृष्ण को सुख लगने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण की सेवा हो, इन सारी चीजों से, और भी हरि गुरु वैष्णव के आनुगत्य में हो, तब ये भक्ति हो। वो भी निरंतर, आज किया कल नहीं किया, एक घंटा किया नहीं किया, जाने निरंतर रहने वाली प्रभावित होने वाली, और जिसमें कोई संसारी पारलौकिक भी कामना नहीं है, कोई भी संसारी कामना न स्वर्ग की, न मोक्ष की, न धर्म की, न अर्थ की, कोई भी कामना। और ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि से ढकी हुई न हो, कर्म करना पड़ेगा किंतु भक्ति का अनुकूल कर्म हो। ज्ञान की भी जरूरत है, इसलिए कृष्ण तत्व जीव तत्व माया तत्व को समझो, किंतु ऐसा मत सोचो तो जो ज्ञान नहीं होने से भक्ति नहीं होगी, कर्म नहीं रहने से भक्ति नहीं होगी, ऐसा मत समझो, नहीं तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए तन से मन से वचन से कामना से भावना से सब प्रकार से जो चेष्टा की जाती है निरंतर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही केवल, और कोई दूसरी कामना वासना न हो, तो उन चेष्टाओं को भक्ति करते। इसके लिए देखना होगा कि गुरु जी की जो भक्ति थी वो राज्य पाने के लिए थी, पीछे भगवान का दर्शन होने पर वो इच्छा उनकी दूर हो गई, किंतु उनकी जो भक्ति थी जो 6 महीने में जो भगवान को पाया वो इतना कठोर रोज तपस्या किया किस लिए, राज्य पाने के लिए, इसलिए ये भक्ति नहीं हुई। भक्ति तो कर्म मिश्रा भक्ति अथवा सकाम भक्ति हुई, शुद्ध भक्ति नहीं हुई, इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहा। शुद्ध भक्ति अभी जो बनता है तब तो वो शुद्ध भक्ति होगी, लेकिन गुरु महाराज की भक्ति भी शुद्ध नहीं है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण बतलाता हूं, तो ध्यान से श्रवण करें। श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता को लेकर वनवास में गए, वनवासी जैसा वेश बनाया, वन में गए। भरत जी शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल में थे, मामा के इधर में महाराज दशरथ ने देखा कि मैं वृद्ध हो गया हूं और हमारा बेटा बड़ा बेटा युद्ध हो गया है, सभी बेटे युद्ध हैं, इसलिए मुझे अब तपस्या करने के लिए भगवान की आराधना करने के लिए अब जाना है। इसलिए महाराज वशिष्ठ जी से और बड़े बड़े ऋषि महर्षियों से परामर्श करके उन्होंने कहा, अब मैं राज्यपाल अपने बड़े बेटे युवराज रामचंद्र जी को देकर के मैं अब आप भगवान की आराधना करने के लिए जाना है। सबने उनको सराहा, जैसी ऐसा ही होने तो आप लोग कोई मुहूर्त देखिए, मुहूर्त दिखाते कलयुग की मुहूर्त है, बड़ी सुंदर बसंत ऋतु चैत का महीना, नवमी तिथि, बड़ी सुंदर सुंदर हवा बह रही है, तो क्या कर रात में पूरी तैयारी की गई, वशिष्ठ जी ने आदेश दिया हो गया, किंतु महारानी महामानी कैकेयी जी ने अड़ंगा डाला और वह राजभक्त को दिखवा दिया, और राम के लिए 14 वर्ष वनवास के लिए आते हैं। ना चाहते हुए भी मर्यादा की डोरी से बंधे हुए महाराज दशरथ को हाँ नहीं कुछ भी नहीं कहा। रामचंद्र जी आए सदैव दूसरे दिन और कहते से पूछ कर चल दिए बन को पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी हाय हाय करते हुए हाराम हाराम करते हुए प्रणाम कर दिया। बन को चले गए चित्रकूट में पहुंचे इधर भट्ट को संदेश दिया गुरु जी ने जल्दी आओ कोई विशेष कार्य है किंतु कार्य क्या है नहीं बतलाया। अब शकुन होने लगे बाई आंख फड़कने लगे और बिना बादल के रक्त में रक्त जैसा पानी गिरने लगा वर्षा से और बड़े बड़े अपशकुन हुए। किसी प्रकार से वहां से मामा का आदेश लेकर के आए उनको अभिनंदन करने के लिए स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं आया कोई भी नहीं आया। ये क्या बात है जब और आगे गए तो उनको देख करके जितने गांव वाले थे अयोध्या पुरवाजी सब मुख फिर दिए। ऐसा तो कभी नहीं होता था। रक्त उतरे पिताजी कोई नहीं आया